सक्षम अंदर आता है और अरुणिमा के सामने आता है। अरुणिमा कहती है, सक्षम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि आप मुझे रानी साहिबा कहकर मत बुलाया कीजिए। अब मैं रानी नहीं हूँ, आप मुझे अरुणिमा ही कहिए। सक्षम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है आपको रानी साहिबा की जगह अरुणिमा कहने में, लेकिन क्योंकि जानवी मेरी छोटी बहन है और जानवी आपको बहुत मानती है, तो आप भी मेरी बहन जैसी ही हुई ना, इसीलिए मैं आपको अरुणिमा ना कहकर अरुण बुलाऊं। अरुणिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और मिश्री से कहती है, जाओ सक्षम भैया के लिए पानी लेकर आओ। मिश्री वहां से किचन की तरफ चली जाती है और शारदा जी कहती हैं, मैं भी जाकर चाय बनाती हूँ। सक्षम वहां पर कुर्सी पर बैठ जाता है और पैकेट में से दवाइयां निकालते हुए कहता है, अरुण, डॉक्टर ने कहा ये दवाइयां तुम्हें सुबह शाम लेनी है और इस दवाइयां को तुम स्किप नहीं कर सकती हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा रिश्ता उससे तब तक था जब तक मेरा रिश्ता आस्तिक से था, लेकिन अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, यहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था की और उसके बाद ये सब। सक्षम कहता है, और ये सब करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। दरअसल बात ऐसी है कि इन सब के पीछे वजह जानवी भी है। उस रात जब तुम महल से निकली तो जानवी को तुम्हारी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी तलाश करूं। अरुणिमा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सक्षम ने आगे कहा, वैसे क्या तुम्हें राजा साहब की गिरफ्तारी के बारे में पता है? अरुणिमा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, न्यूज में देखा है। सक्षम कहता है, तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो? किस बारे में? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। तो सक्षम कहता है, यही कि राजा साहब किसी का खून कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में किसी की जान ले सकते हैं? अरुणिमा हंसते हुए कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है सक्षम कि मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता है? मेरे कुछ लगने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना, और वैसे भी वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि राजा साहब ने ही नेताओं की हत्या की है। ये सब कानूनी मामला है और मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वैसे भी इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरुणिमा का इतना ठंडा जवाब सुनकर सक्षम भी हैरान होता है, लेकिन इस वक्त वो इस बात को और बढ़ाकर अरुणिमा को परेशान नहीं करना चाहता है, इसीलिए उसने बात यहीं पर खत्म कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में आस्तिक को पुलिस स्टेशन लाया तो गया था, लेकिन उसे एक जेल के अंदर नहीं डाला गया था, बल्कि वो कमिश्नर ऑफिस में बंदी बनाकर रखा गया था। ना तो उसे फोन का इस्तेमाल करने दिया जा रहा था और ना ही किसी से मिलने दिया जा रहा था। बहुत कहने के बाद आस्तिक को सिर्फ एक कॉल करने की इजाज़त मिली थी और आस्तिक ने उसी का फायदा उठाया था। उसने वो कॉल अपने लॉयर्स की टीम को की थी। आस्तिक के लॉयर्स कमिश्नर ऑफिस में आते हैं और फाइल आगे करते हुए कहते हैं, कमिश्नर साहब, अब राजा साहब को इस तरीके से जेल में नहीं रख सकते हैं, हमारे पास उनके जमानत के पेपर हैं। जमानत के पेपर्स को देखकर रजत की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है और उसने रजत से कहा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे ज्यादा समय तक जेल में बंद नहीं कर सकते हो। रजत का चेहरा सख्त हो जाता है। वो जमानत के पेपर उठाता है और देखता है कि ये सारे पेपर कोर्ट से अप्रूव किए गए थे। रजत हैरानी से कमिश्नर साहब को देखते हुए कहता है, सर, सारे सबूत होने के बावजूद भी आस्तिक रायचंद को जमानत कैसे मिल सकती है? आस्तिक के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, लेकिन कमिश्नर साहब के चेहरे पर और रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी कमिश्नर साहब के टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है। वो अपना फोन उठाकर कान पर लगाते हैं और किसी से कुछ सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। जी, मैं समझ गया। जी, जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कमिश्नर साहब फोन रख देते हैं और एक गहरी सांस छोड़ते हुए रजत से कहते हैं, रजत, हमें राजा साहब को छोड़ना होगा। आस्तिक के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बहुत शान से उस कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन रजत हैरानी से कहता है, ऐसे कैसे सर? हमारे पास प्रूफ है, एक अपराधी होने के बावजूद हम इन्हें जमानत पर कैसे छोड़ सकते हैं? तभी वहां पर मौजूद आस्तिक के लॉयर कहते हैं, ऑफिसर रजत, आप राजा साहब को अपराधी नहीं कह सकते हैं, आपके पास जो सबूत है वो फर्जी है। रजत का चेहरा भी गुस्से में भर जाता है और वो आगे बढ़ने वाला होता है कि कमिश्नर साहब रजत को रोकते हुए कहते हैं, रजत, शांत हो जाओ, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा साहब को छोड़ने के ऑर्डर हमें ऊपर से मिले हैं और उनका ये भी कहना है कि जो सबूत तुमने राजा साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं उन सब की फिर से जाँच करो। उसके बाद कमिश्नर साहब आस्तिक को देख कर कहते हैं, माफ कीजिए राजा साहब, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो गलती हुई है उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, आप जा सकते हैं। आस्तिक खड़ा होता है और अपनी आस्तीन झड़ना हुआ रजत को एक कोल्ड लुक देता है और मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। वो कमरे से बाहर आता ही है कि पीछे से रजत की आवाज आती है, एक मिनट राजा साहब। आस्तिक रुक जाता है और पलटकर रजत को देखा है तो रजत आस्तिक की आंखों में देखते हुए उसे कहता है,
आप भले ही जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जल्द ही मैं आपको कोर्ट में पेश करूंगा और तब मैं जो सबूत पेश करूंगा उसे झूठा करार देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और वो धीरे से रजत के कानों के पास झुकते हुए कहता है, पैसों से कुछ भी हो सकता है। आस्तिक अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए रजत को देखता है और वहां से चला जाता है। कमिश्नर साहब को ना चाहते हुए भी मीडिया के सामने ये कहना पड़ा था कि उनकी टीम से गलती हुई है और आस्तिक का इन सब में कोई हाथ नहीं है। जो सबूत पेश किए गए थे वो सब फर्जी थे और उन सबका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मीडिया ने जो आस्तिक की छवि खराब की थी उसके लिए मीडिया ने माफी मांगी है और आस्तिक के लिए अब अच्छी अच्छी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। ये सारी न्यूज अरुणिमा भी देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। जाहिर सी बात है, इन सब खबरों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था ये बात तो अरुणिमा जानती ही थी। उसे पता था कि आस्तिक अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अरुणिमा का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो आस्तिक को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, वो आस्तिक को तड़पते हुए देखना चाहती थी। वो सिर्फ उसे छोड़कर खुश नहीं थी, वो चाहती थी कि आस्तिक भी वो दर्द वो तकलीफ बर्दाश्त करे जो उसने सहा है। चाल तो कोई और भी चलने का इंतजार कर रहा था। शारदा जी सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो अरुणिमा को एक मोहरे की तरह फिर से इस्तेमाल कर सके और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर सके। इसीलिए वो अरुणिमा के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। हालांकि अरुणिमा को देखकर उसके मन में गुस्सा हर समय बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो एक आखिरी चाल चले और सारी दांव उसकी तरफ हो जाएं।